उपस्थित सज्जनों, देवियों, आज हम यजुर्वेद के 40वां अध्याय, जिसे हम ईशावास्योपनिषद कहते हैं, उसका चतुर्थ मंत्र है, उसका विचार करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं। अनेजदेकम्, बोलिए, अनेजदेकम् मनसो जवीयो नैनत्तेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनत्तेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नाप मातरिश्वा दधाति। इसका मोटा मोटी ट्रांसलेशन है कि वो जो आत्मा है वो कभी चलता फिरता नहीं है, स्थिर है, अकेला है, पर इसका जो दूसरा पक्ष है वो कभी चलता फिरता नहीं, पर वो मन से भी ज्यादा तेज गति में चलता है। वो चलता फिरता नहीं है, उसके बावजूद भी इंद्रियां उसको पाते नहीं है, वो गति नहीं करता, पर समस्त गतिशीलों से वो हमेशा आगे रहता है। जो उपनिषद के वाक्य हैं वो आपस में देखने में बड़े कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधी दिखते हैं। गति नहीं करता पर गति वालों से भी ज्यादा तेज होता है। इस मंत्र की चर्चा करने से पहले दो चार चीजें आत्मा पर जान लीजिए थोड़ी सी। हमारा जो अपना अस्तित्व है, जो सत्ता है, वो किसी गहराई में छुपा हुआ हमेशा होता है। जब मैं अपने आप को मैं कहता हूं तो सबसे पहले जो मेरा जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो मेरा शरीर, मेरा पोस्ट, मेरा नाम, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे संपत्ति से। जितने धन, संपत्ति, बच्चे, रिलेटिव्स कम होते जाएंगे, घर परिवार कम होता जाएगा, मेरा मैंपन उतना घटता जाएगा, मैं उतना दबता जाऊंगा। जितने ये बढ़ते जाएंगे मैं भी फूलता जाऊंगा। तो मैं का जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरे कमाए हुए चीजों से होता है। जो थोड़ी गहराई में जाते हैं वो सोचते हैं जो मैं हूं, मतलब हमारा जो अपने आइडेंटिफिकेशन है वो मेरा मन है, क्योंकि सब कुछ यहीं से चलता है। मैं सोचता हूं, मैं विचारता हूं, मेरा ज्ञान होता है, मैं अच्छा बुरा जानता हूं, तो मेरे पूरे जो पूरी एक्टिविटीज को ये मन कंट्रोल करता है। जो मेरा विचार है, जो थोड़े और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं उनको लगता है नहीं, जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, जो दिमाग है, इसी से सब कुछ कंट्रोल होता है मेरा। तो यही मैं हूं, मेरा जो असली असलियत का जो मूल आधार है वो यही है। और जो बहुत गहराई में जाते हैं उनका कहना होता है ना ये बाहरी दुनिया जो मैंने कमाया वो मैं हूं, ना जिसके द्वारा कमाया वो मैं हूं, ना शरीर में हूं, ना मन में हूं, ना मैं बुद्धि हूं, मेरा जो अपनी, मेरी जो अपनी सत्ता है वो छुपी हुई है, जिसे मैं आत्मा कहता हूं, वो इतनी गहराई में छुपी हुई है। जैसे पेड़ को आप देखते हैं, पेड़ को देखते ही पहले नजर तो पत्तों पर जाता है, पत्तों के पीछे उनके टहनियां हैं, शाखाएं हैं, डालियां हैं। थोड़ा अंदर घुसेंगे तो पेड़ का जो धड़ है, जो बॉडी है वो आपको दिखता है। हमें लगता है यही पेड़ की असलियत है। खास करके पत्तों से हम ज्यादा जुड़े रहते हैं, हमें लगता है कि ये पत्तों में ही पेड़ का जीवन छुपा हुआ है, क्योंकि जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ भी सूख जाता है। ये पत्ते हरे होते हैं तो लगता है कि पेड़ जिंदा है, तो पेड़ का जीवन पत्तों में है। ऐसा सोचने वाले ज्यादातर वो होते हैं जैसे हम अपने बारे में, अपने को जब पहचानते हैं तो हम अपनी कमाई हुई चीजों को पहचानते हैं। जैसे ही थोड़ी गहराई में आप जाते हैं, आपको लगता है नहीं, ये पत्ते तो और कहीं से रस लेते हैं, इनके भी अपना अस्तित्व अपने हाथ में नहीं है। तो आपको लगता है अच्छा ये डालियां होंगे क्योंकि पत्ते डालियों पर हैं। थोड़ी गहराई में जाएंगे, नहीं, ये जो धड़ है पेड़ का, जो बॉडी है, शायद यही है इसका अस्तित्व का सार। जब हम मेहनत करते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं, पता लगता है उसके जो जो मूल स्रोत है, जहां से ये जीवन का स्रोत आता है, वो तो मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। वो पेड़ का जो जड़ होता है, जो रूट होता है, उसी से पेड़ का जीवन है। पेड़ का असली अस्तित्व वो जड़ है, पर वो कहां है, वो मिट्टी में छुपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है। उसको समझने के लिए फिर आपको थोड़ी अंदर की ओर यात्रा करनी पड़ती है। पर ध्यान रखिए, जिस दिन आपको यह पता चला कि पेड़ का जीवन पत्तों में नहीं, डालियों में नहीं, शरीर में नहीं, उसके जड़ों में है, उस दिन आपको और एक ज्ञान साथ साथ हो जाएगा कि ये जड़ें पेड़ का आधार तो जरूर है, पर ये जो जड़ें जो रस लेते हैं वो धरती से लेते हैं। तो धरती का जो जल का स्रोत है, जो जो उपजाऊपन है, जो जो मिट्टी है, इसी से वो जड़ अपना स्रोत लेता है। ये दोनों ज्ञान आपको साथ साथ होंगे। जड़ का ज्ञान होगा तो उसी समय आपको यह भी ज्ञान होगा कि मिट्टी से रस लेता है। अगर आपको यह नहीं पता चला कि जड़ मिट्टी से रस लेता है, तब तक आप जड़ का महत्व नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह जैसे ही हम अपने आप को खंगालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हम पत्तों से धीरे धीरे अंदर की ओर यात्रा करते हैं, बाहरी दुनिया से शरीर मन बुद्धि और आत्मा तक पहुंचते हैं। यह आत्मा कौन है? यह शरीर का जड़ है, यह इस मेरे शरीर, मेरा स्वरूप का, मेरे व्यक्तित्व का जड़ है, जहां से मेरा जीवन चलता है। वो आत्मा नहीं है तो ना मेरा मन काम करता है, ना मेरी बुद्धि काम करती है, ना मेरे इंद्रियां काम करती हैं। और जिस दिन व्यक्ति को अपना स्वरूप का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान, असलियत का ज्ञान होता है, उसको उस समय दो ज्ञान होते हैं। जिस दिन आपने खुद को जाना, उसी दिन आप ईश्वर को भी जानेंगे कि ये आत्मा जहां से रस लेता है, उसको भी उसी दिन आपको पता चलेगा। इसलिए बड़े मजेदार बात है, आप देखेंगे भारतीय जो हिंदू साहित्य में, शब्दकोश में, भंडार में, आपको ये शब्द नहीं मिलेगा कि ये ईश्वर ज्ञानी है, ये परमात्मा ज्ञानी है, ऐसा शब्द कहीं नहीं मिलेगा। जिसने ईश्वर को जाना, उसको हम कहते हैं आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी मतलब जिसने खुद को जाना। आप ईश्वर को मंदिर में नहीं जान सकते हो, धरती चांद पर नहीं जान सकते हो। जिसने खुद को नहीं जाना, वो पूरे दुनिया के हर तत्व को, हर एलिमेंट्स को भी समझ जाए तो भी वो ईश्वर को नहीं जाना। जो जड़ तक नहीं जाएगा पेड़ को, उसको कतई नहीं पता चलेगा कि पेड़ के जीवन का आधार जमीन में छुपा हुआ है। इसीलिए जो खुद को जानता है, वो उसी के साथ साथ ईश्वर को भी जानता है कि वहीं से स्रोत लेता है। इसीलिए उपनिषदों में जो लोग उपनिषद के पढ़ने वाले हैं, उनको ये बड़ी समस्या होती है कि उपनिषद में आत्मा शब्द जो है, वो कहीं परमात्मा के लिए, कभी आत्मा के लिए, कभी शरीर के लिए, बड़े सारे अर्थों में आते हैं। जो डिक्शनरी देख करके किताब पढ़ने की कोशिश करता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, लगता है वो पटांग बातें हैं। तो आत्मा जो भी दुनिया में जिसके आधार पर संसार चलता है वो हमेशा छुपा हुआ होता है, वो हमेशा अंदर होता है। उस आत्म तत्व को इस मंत्र में बात की कि वो अनेज देकम, अनेजक जिसमें कोई गति नहीं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, आत्मा गति रहित है। आपकी जो गाड़ी चलाते हैं आप लोग, गाड़ी की जो पहिया है, पहिया घूमती है इसीलिए क्योंकि पहिए के बीच में जो कील है वो स्थिर है। अगर वो ढीला हो जाए तो आपकी पहिया किधर जाएगी, आप कहां स्टीयरिंग मोड़ेंगे, पहिया किधर जाएगी, कोई पता नहीं गाड़ी कब एक्सीडेंट हो। आपकी पहिया तब तक घूमती रहेगी, आपकी गाड़ी का व्हील तब तक ठीक से घूमेगा जब तक व्हील के अंदर का जो कील है वो स्थिर होगा। ये जो यहां तो बहुत आते हैं ये बबंडर, जो हवा तूफान आते हैं, ये जो बबंडर होता है घूर्णीवाद, जो चक्रवाद जिसको कहते हैं, हवा घूम घूम करके घूमता है, बड़ी बर्बादियां होती है उससे, टर्नेडो कहते हैं। उसकी खास बात देखें, कभी गर्मी के मौसम में छोटे छोटे भी होते हैं, बचपन में आपने गांव में भी देखा होगा कहीं भी छोटे छोटे होते हैं, बड़े अब होते हैं तो आपका घर पर घर वगैरह सब बर्बाद हो जाता है, पर छोटे छोटे भी होते हैं उसमें खास बात आप देखेंगे, कोई भी घूर्णीवात या चक्रवात हो उसमें कील होता है वो हवा का, जो बिल्कुल अगर वहां एक पत्ता भी गिरा ना वो वैसे ही पड़ा रहेगा। चारों तरफ हो सकता है कि कितने घर टूट गए होंगे, पेड़ उखड़ गए होंगे, पर जहां वो चक्रवात का जो कील है, जो पॉइंट सेंटर पॉइंट है, वो इतने बिल्कुल शांत होता है और वहां कुछ भी है वो वैसे ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब तक स्थिर कोई नहीं कील मिलेगा वो बात घूम ही नहीं सकता। इसी तरह पानी में आप देखेंगे, जो पानी में चक्कर होता है कभी कभी समुद्र में नदियों में, जो बहुत जब ज्यादा स्रोत होता है तो बड़ा चक्र होता है, अगर गलती से आप फंस गए तो आपकी हड्डी पसली बिल्कुल वो घुरता बन जाते हैं, चुरा बन जाते हैं, पर उसका जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम कील कहते हैं, अगर वहां फंस गए तो वैसे के वैसे सुरक्षित रह जाएंगे, वो स्थिर होता है। दुनिया में मेरा मतलब है, दुनिया में किसी भी चीज को घूमने के लिए, गति करने के लिए एक स्थिर पॉइंट की कील की जरूरत होती है। आपके शरीर में गति है, आप बचपन से जवानी की ओर आए, किशोर बने, किशोर से जवान बने, जवान से प्रौढ़ की थोड़ा ज्यादा एजेड बनेंगे, फिर आप बुजुर्ग बनेंगे, फिर शरीर छोड़ के नए शरीर लेंगे, ये सब हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई स्थिर चीज है, इसीलिए शरीर में बदलाव आ रहा है। मरे हुए आज शरीर का जिसकी आत्मा निकल गई है, ना वो बुढ़ापा उसमें आती है, ना जवानी आती है, ना बचपन आता है, वो तो दो दिन में बदबू करने लगता है, सड़ जाता है, गल जाता है, क्योंकि उसका कील हिल गया, निकल गया, पहिया नहीं चल सकती। आप कितना एनर्जी डालो, कितने स्टीयरिंग घुमाओ, आपके मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलता है, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम फिक्स है, टाइम कभी नहीं बदलता, काल स्थिर है, अनंत है। ये पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, तारे घूमते हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, क्यों? क्योंकि आकाश स्थिर है। एक स्थिर चीज के आधार के बिना संसार में कोई भी गति कभी नहीं हो सकती। मेरे शरीर में जो बदलाव आते हैं इसीलिए आते हैं कि मेरे अंदर कोई स्थिर चीज है, तभी बदलाव आता है। प्रकृति बदलती है, ये जो दुनिया है इसमें बदलाव आता है। ये धरती कब हो सकता है? करोड़ों करोड़ों सालों के बाद ये धरती नहीं रहेगी, ये धरती बनी किसी थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी हो, किसी भी थ्योरी से आप मानते हैं वो बनी, ये एक दिन नहीं रहे, क्योंकि जो बनता है वो नहीं रहता है। कितने तारे डेड मर गए हैं, नए तारे आ जाते हैं, कितने जो ग्रह हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनमें फिर जीव जगत नहीं होता, नए ग्रहों में नई सृष्टि होती है, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि वहां कोई स्थिर चीज है जिसे हम परम आत्मा कहते हैं। शरीर में आत्मा है, ये विशाल शरीर में, ब्रह्मांड में परम आत्मा, परम मतलब सुप्रीम सोल है, वो स्थिर है। अनेजदेकम, और वो अकेला है, मैं अपने अंदर मैं अकेला हूं, इस विशाल ब्रह्मांड में वो परमात्मा अकेला है। ये दो अलग एंटिटी है, मेरे लिए मेरे शरीर एक पिंड है, उसके अंदर आत्मा अकेला है, मेरे अंदर दो आत्माएं नहीं है, और इस विशाल ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है, वो अकेला है। अनेज देकम, और वो दूसरी खास बात है, मनसो जवियो, पर समस्या है कि वो गति तो नहीं करता, पर मन से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ता है। आप को गुलाब के फूल का जो जो उसकी सुगंध है, जो उसकी खूबसूरती है, उसका मजा लेना है। आपके आप साइकिल से चले, पैदल चले, गुलाब के फूल की खुशबू लेने, अगर आप दौड़ लगाते हैं तो उसकी खुशबू आपको कम मिलेगा, उसकी खूबसूरती को आप कम निहार पाएंगे। अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आपको और कम उसका आभास होगा, अगर आप बाइक से जाते हैं और कम होगा। जितनी आपकी गति तेज होती जाएगी, तेज गाड़ी में आप जाएंगे, गुलाब का एहसास आपको उतना कम होता जाएगा। इसका अर्थ नहीं कि गुलाब नहीं है, गुलाब अपने जगह से है, पर है कि मैं क्यों नहीं पकड़ पाता हूं, क्योंकि मैं इतने तेज गति से भागता हूं तो सवाल नहीं उठता है। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जाऊं, जेट से जाऊं, सैटेलाइट से जाऊं तो फिर और मुश्किल होता जाएगा, रॉकेट से जाऊं तो और मुश्किल होता जाएगा। मेरी गति जितनी तेज होगी, मैं स्थिर चीज से इतना दूर होता जाऊंगा। इसीलिए आप एक बड़ी बात दुनिया के हर रिलीजियन में आप सुनते हैं कि आप जो जितना भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है वो उतना आत्मिक सुख से दूर होता है, क्योंकि आत्मा स्थिर है। स्थिर को पाने के लिए आपको स्थिर होना पड़ता है। इसीलिए तो ये धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, ये क्या है? आप अपनी बॉडी को, माइंड को, इंटेलेक्ट को शांत करें। गुलाब के मजा लेना है तो गुलाब के सामने खड़े होइए, शांति से खड़े होइए, फिर निहारिए, फिर देखिए गुलाब कितना प्यारा है। पर समस्या है कि मन हमारे साइंस में जितने भी तेज गति से गाड़ी निकाली गई है उससे भी तेज गति से चलने वाला है। सूरज की जो किरणें हुए उनसे भी तेज गति से चलने वाला, शब्द से भी ज्यादा तेज गति से चलने वाला। अभी आप मेरे व्याख्यान को सुन रहे हैं, मन व्याख्यान में था और पता नहीं अचानक घर जाकर के किचन में ताला लगाया नहीं लगाया होकर आ चुका है। आप दौड़े घर की, मैंने ताला लगाया नहीं था प्रवचन के बाद घर में, जब तक आप घर की ओर यात्रा करते तब तक आप पूरे अमेरिका, इंडिया से ले कहां कहां, आपके दुकान, आपके ऑफिस, सौ करोड़ों जगह से घूमकर आ चुके होते हैं। इतनी तेज गति से चलता है, आपका सोच भी पिछड़ जाता है, आपकी दुनिया ही सारी शक्तियां उसे पिछड़ जाती हैं। मन से आत्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं। मन कभी शांत नहीं हो सकता, मन हमेशा गति करता है और आत्मा हमेशा शांत है। इसीलिए आपको दुनिया में कोई भी आत्मा के बारे में ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपाय बताता है, कहते हैं आंखें बंद करो, दुनिया से अपना नाता छोड़ो, अपने आप को शांत करो, मन को कूल शांत करो। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन तो शुरू ही करते हैं, अतः योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन को रोकना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ज्ञान होगा, बस अपने मन को रोक लो। मन गति करता है तो क्या प्रॉब्लम है? दुनिया को तो मैं दुनिया में जो कुछ कमाया, जो कुछ पाया, ये गति वाले मन से तो पाया, आत्मा को पा लूंगा। समस्या है, ईश्वर ने जो हमारे मन या जो इंद्रियों को सेंसेस को बनाया, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा बाहर की ओर गति करते हैं, ये अंदर की ओर गति कर ही नहीं सकते, इनके नेचर में नहीं है, इनको लाना पड़ता है। जैसे आग को आप कितना भी उल्टा करके रखिए वो ऊपर की ओर उठती है, पानी को कितने भी पहाड़ पर रखिए वो नीचे की ओर जाएगी, मन और इंद्रियों को कितना भी रोकिए वो बाहर की ओर जाएंगे। मन का आदत है बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ना। क्यों इंसानी जगत में किसी भी अपराध के लिए जेल की सजा ही मिलती है, अब फांसी धीरे धीरे हटती जा रही है, जेल कोई छोटी सी भी गलती करिए, आप गलत तरीके से ड्राइविंग करते तो भी जेल, आप करोड़ों लोगों को कत्ल कर देते तो भी जेल। जेल का मतलब आपको बाहरी दुनिया, आपकी जो नेचर है उसके खिलाफ आपको रहने देना, यही आपकी सजा है। आपका मन कहता है कि मैं देखूं क्या हो रहा है, आपको देखने नहीं दिया जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। मैं खाऊं जो मेरी मर्जी, आपको वो नहीं करने दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। जब आपकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ होगा, इस फिर धीरे 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 ये आपके लिए सबसे बड़ी सजा। इसीलिए दुनिया में आजादी का बड़ा महत्व होता है, क्यों लाखों लोग अपनी जान देते हैं। कौन सा भारत आजाद हो गया, गोरे शासन करते थे तो काले शासन करेंगे, काले नहीं करते थे तो वो का छोटे आंख वाले करेंगे तो बड़े आंख वाले करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, शासन तो शासन है। नहीं, महाभारत में एक बात आती है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, बोले दूसरों के राजमहल में रहते हुए भी सब तरह के सुख भोगना भी दुख के बराबर होता है, दुख होता है। बोले सुख क्या है दुनिया में सबसे बड़ा, कि गरीबी में भी चार दिन में एक बार भी खाओ पर अपनी मर्जी से अगर डिसीजन लेते हो, ये है सुख। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, प्राणी के लिए भी, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। मन का स्वभाव है बाहर की ओर गति करना, और जो बाहर की ओर गति करे, आत्मा आपके अंदर है, मन बाहर की ओर गति करता है और कितना भी दौड़े, इसीलिए आत्मा हाथ में आती नहीं है। हम मंदिरों में दौड़ते हैं, हम तीर्थों में दौड़ते हैं, हम पंडितों के पास दौड़ते हैं, हम सन्यासियों के पास दौड़ते हैं, हम आश्रमों में दौड़ते हैं, हम अमुक जगह दौड़ते हैं, दुनिया भर के जगह दौड़ते हैं, उससे पर शांति कहीं नहीं मिलती। और ज्यादातर तो ऐसा होता है जिन बाबाओं सन्यासी आचार्यों के पास आप दौड़ते हैं वो खुद ही अशांत होते हैं। तो जो खुद अशांत आत्मा आपको कहां से शांति देगा। इसीलिए आपको तथाकथित धार्मिक लोग आम आदमी से ज्यादा अच्छे नहीं मिलते, बस कपड़े बदले हुए दिखते हैं, ऊपर के आवरण कभी चंदन तिलक टीका वगैरह बदले हुए मिलेंगे, पर आचरण में अंदर की शांति में कोई फर्क नहीं मिलेगा। हो सकता है जूता पॉलिश करने वाला उससे ज्यादा शांत मिल जाए। क्यों? अगर आपकी मन को आपने रोका नहीं, आप कपड़े बदले, जगह बदले, दुनिया बदले, कुछ भी करे कोई फायदा नहीं। अब मन का स्वभाव बाहर की गति, मन को रोकोगे तो वहां तक पहुंचोगे। आत्मा मन से ज्यादा तेज गति वाला है, इसीलिए कि मन को कभी पकड़ में आया ही नहीं आत्मा। करोड़ों लोग करोड़ों सालों से, करोड़ों बार करोड़ों जन्मों में ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं और करते ही रहते हैं। क्यों मिलता क्यों नहीं? क्योंकि मन से ढूंढते हैं, दक्षिणा देकर ढूंढते हैं, दान देकर के ढूंढते हैं, यात्रा करके ढूंढते हैं, मन से ढूंढते हैं। ये गीता का जो निष्काम कर्म है, योग है, इसको भी बड़ा गलत बड़ा उठपटांग इंटरप्रिटेशन किया। क्यों? जब आपका मन दुनिया में है तो आप समझ नहीं पाओगे ना, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अध्यात्म क्षेत्र क्या है। आगे चलते हैं। वो आत्मा मन से भी तेज गति वाला है, क्योंकि मन को कभी वो मिलता नहीं है। और दूसरी बात है, आपका मन कहीं भी पहुंचे उससे पहले आत्मा मिल जाती है। आप अमेरिका में बैठे बैठे यहां भी आपको आत्मा मिलेगी। अगर आपको पाने की योग्यता है, अगर आपको वो तरीका पता है, अब भारत में जाएंगे मिलेगा, अब चांद पर भी मिलेगा, सूरज पर भी मिलेगा। फिर मुझे लगता है यार, मैं जहां भी जाता हूं वहां आत्मा मिल जाती है, मेरे मन से पहले ये कहां से आया, इसमें तो गति नहीं है। आत्मा अनेजत है, गति रहित है, क्योंकि इसीलिए नहीं है कि उसमें कोई ठहराव आ गया है, वो तालाब के पानी की तरह नहीं है कि चारों तरफ बांध बंधा है, इसीलिए कि वो इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है, गति करने की कोई जगह ही नहीं। मेरी जो मोटाई चौड़ाई है, अगर वो ये हॉल के बराबर का होता, मैं इतना ही मोटा चौड़ा होता, तो मैं आपसे मिलने के लिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोटाई चौड़ाई इतने इंच है और आप वहां बैठे हो, तो मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। मेरी गति तभी जरूरत होगी, मेरी गति की मूवमेंट। परमात्मा को गति की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो है सब जगह, बस तुम्हें जाना है। जो गति का मतलब क्या, मूवमेंट कब होती है? जो आपसे दूर है वहां पहुंचने के लिए गति की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, आत्मा शरीर में सब जगह है, परमात्मा ब्रह्मांड में सब जगह है, इसीलिए उसकी गति नहीं है। और मन कितनी भी गतिशील हो, उसे पहले वहां मिलता है। मनसो जवियो नई नद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं। आप कहेंगे इसमें इंद्रिय शब्द कहां है? देव, देव का अर्थ होता है, पहले दिन परसों पिछले संडे को मैंने व्याख्या की थी, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्युस्थानो भवतीतिवा, जो देता है, जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाशित होता है, वो सब देव है। उनमें एक एटिमोलॉजी, एक व्याख्या आपने पढ़ी थी, जो प्रकाशित करता है। मैं आपको देख पाता हूं, मतलब आप मेरे लिए प्रकाश में आते हैं, क्योंकि मेरे आंखें हैं। खाने का स्वाद मुझे पता लगता है, क्योंकि मेरे जीभ ठीक है। ठंडा या गर्मी का पता लगता है, क्योंकि मेरे स्किन का जो सेंस है वो ठीक है। ये मेरे इंद्रियां हैं जिनके कारण मैं दुनिया में प्रकाशित हूं, दुनिया मेरे लिए प्रकाशित है। अगर मेरे आंखें नहीं होते, ये लाइट है नहीं है, आप लाल हैं, पीले हैं, काले हैं, मुझे नहीं पता लगता। इसीलिए इंद्रियों को देव कहा जाता है। आपको पता है देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। इंद्र से रिलेटेड लोगों को इंद्रिय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, दोबारा कहता हूं, इंद्र देवताओं का राजा होता है, और आपके सेंसेस को संस्कृत में इंद्रिय कहते हैं। इंद्र का अर्थ होता है आत्मा, जो इंद्रियों का राजा होता है। इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्र से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड लोग भारतीय होते हैं, अमेरिका से रिलेटेड अमेरिकीय होते हैं, अंग्रेजी में अमेरिकन बोलते हैं, हिंदी में संस्कृत में आप अमेरिकीय बोलेंगे। इंद्र से रिलेटेड इंद्रियां। आपके शरीर में राजा आत्मा है, वो इंद्र है, ये इंद्रियां है उसके रिलेटेड, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके सबोर्डिनेट्स हैं, उनके काम करने वाले हैं। इंद्रियां जो प्रकाशक होते हैं, वो कभी आत्मा को पाते नहीं है। मैं अपनी इंद्रियों से पैसा कमा लेता हूं, घर बना लेता हूं, यश कमा लेता हूं, लोग कमा लेता हूं, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों के नेता हैं, लीडर हैं, उनके पीछे करोड़ों लोग खड़े होते हैं, हर तरह के सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेता हूं, दुख भी कमा लेता हूं, फिर मैं आत्मा को मेरे इंद्रियां क्यों नहीं पा पाती? समय हो रहा है, संक्षिप्त में समाप्त करता हूं, क्योंकि इंद्रियों की ज्ञान करने की कुछ समस्याएं हैं। पांच ऐसी समस्याएं जहां इंद्रियां काम नहीं करती है, या तो बहुत दूर हो या बहुत नजदीक हो, बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, या बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो, कोई बाधा हो, और छठी चीज है, इंद्रियों में कोई कमी हो। आपके घर में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा होगा जरूर, फ्रिज चल रहे होंगे, कुछ तो हो रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा है। इसका अर्थ नहीं कि घर नहीं है, घर में कुछ हो नहीं रहा है, आपकी आंखें वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो आपके आंखों से दूर है। आपके आंखों के इधर क्या है लगा है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि बड़े नजदीक है। विशाल ब्रह्मांड में क्या हो रहा है पता नहीं चलता क्योंकि बहुत बड़ा है। ये अणु परमाणु आपके ये शरीर में आप बैठे हो पता नहीं लाखों तो अभी गिर वहां छोटे छोटे जो डस्ट हैं पड़े होंगे आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो छोटे हैं। और इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है ज्यादा दूर नहीं है मुझे देख सकता हूं पर वहां ऑब्स्टिकल है बाधा है इसलिए मुझे नहीं दिखता। और छठा है मेरे इंद्रियों की में कोई कमी हो मुझे आंखें में दिखता ना हो कम दिखता हो कान में कम सुनाई देता हो। इंद्रियों की अपना एक लिमिटेशन एक सीमा है उससे ज्यादा वो जान नहीं सकते। आत्मा को क्यों नहीं जान सकते क्योंकि आत्मा सूक्ष्मतम है उसकी चर्चा आगे करेंगे आज के मंत्र का विषय नहीं है। दुनिया में सबसे सूक्ष्मतम चीज आत्मा है वो सूक्ष्मतम भी है और संसार में सब जगह होने से सबसे बड़ा भी है। आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों को बीच में बाधाएं हैं हमारे विचार हमारे इच्छाएं हमारे हमारे लोभ मोह क्रोध ईर्ष्याएं प्रेम सब बाधाएं हैं। और दूसरी समस्या है इंद्रियों की इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर गति करते हैं आंखें सबको देख सकता है खुद को नहीं। इसीलिए क्या होता है हम दूसरों को वो सारे सलाह देते हैं जो खुद नहीं करते वो दूसरों की सब बुराइयां मुझे दिखता है जो मेरी बुराइयां जो खुद मैं उतने ही बुराई मेरे में है पर मैं दूसरों को सलाह देता हूं क्योंकि दूसरों की बुराइयां दिखता है अपनी बुराइयां नहीं दिखता। जो समझदार हैं वो अपनी बुराइयों को भी देख लेते हैं जब थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं जब अंदर की गति करते हैं पर ज्यादातर लोग दूसरों की बुराइयों को देखते हैं दूसरों को अच्छाइयां देखते हैं बहुत सारे लोग खुद की अच्छाई भी नहीं जान पाते हैं इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। बड़े सारे मेधावी लोग हैं बच्चे हैं पर लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाते उनको लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपनी ताकत को समझ नहीं पाते जान नहीं पाते अपनी अच्छाई को जान नहीं पाते बुराई को जान नहीं पाते। उसके लिए अंदर की गति जरूरी है और हमारी इंद्रियों से जहां तक देखेंगे वो दुनिया को देखेंगे। आत्मा इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता क्योंकि इंद्रियां बाहर दुनिया में गति करते हैं इंद्रियों की अपनी सीमा है। अगला है तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् वो गति शून्य है उसके बावजूद भी दौड़ने वाले हर चीज से वो आगे रहता है। दौड़ने वाले कौन है मेरी इंद्रियां मेरा मन 24 घंटे दौड़ते हैं इनको दौड़ने के लिए ये कभी शांत नहीं होती क्यों क्योंकि इनको बहाना चाहिए होता है ये नेचर है इनका दौड़ना फिर बहाना बनाते हैं क्या नहीं मैं क्या करूं मैं बहुत बिजी हूं क्यों मुझे पैसा कमाना है। अच्छा ठीक है पैसे तो कमा लिया आप क्यों नहीं अब मुझे नाम कमाना है। अच्छा नाम तो कमा लिया आप तो शांत हो नहीं मुझे धर्म कमाना है आप तो धर्म तो बहुत कमा लिया आप तो शांत हो अब मुझे मुक्ति कमाना है मुक्ति कमाना है मुक्ति मिल गई आप तो शांत हो नहीं मुझे मन को बहाना हम बिजी रहना चाहते हैं हम अपने मन को एंगेज रखना चाहते हैं और बहाना ढूंढते हैं कि ये और अगर आप टटोलेंगे अगर आप खंगालेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी व्यस्तता में 50% ऐसी व्यस्तताएं जो नहीं होते तो और अच्छा होता और तब भी हम बिजी मतलब हमारा मन हमें बिजी रखता है ये करो टाइम नहीं है टाइम नहीं है नहीं दोस्तों से बात करते हैं तो 4 घंटे बात करते हैं। व्यक्ति मन हमेशा बहाना ढूंढता है अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। अब व्यस्त रखना मतलब गति करना अब मन जब शांत होता है तभी आप इसको प्राप्त करते हैं। तस्मिन्नापो मातरी स्वदधाति वो जो आत्मा है समस्त संसार का धारक है संधारक है वो इस संसार के हर वस्तु को इस विशाल संसार को अपने अंदर धारण करता है। ये इस मंत्र में थोड़ी सी आप समरी में लास्ट में सातवें में ले आइए इस मंत्र का जो सार है समय हो चुका है कि वो आत्मा जो गति शून्य है उसके बावजूद भी वो अकेला है उसके बावजूद भी वो मन से तीव्र गति से रहता है उसके बावजूद गति शून्य होने पर भी इंद्रियां उसको पा नहीं पाती हैं। दुनिया में हर दौड़ने वाला व्यक्ति उसे पिछड़ जाता है, क्योंकि दौड़ने वाला खुद को ही छोड़ के भागता है, और आत्मा आप खुद हो, और वो जो आत्मा तत्व है वो समस्त संसार का संधारक है। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।